सन की माता जी भी। माता पिता चले जाने के बाद सारे जो संसार की एवं कुल देवता गोपीनाथ की सेवा की भार मुकुंद के ऊपर आया और नरहरि का शिक्षा भी देना है तो स्कूल भेजना है, सारे कार्य उनके ऊपर आ गया। नए नए डॉक्टर बने तो नरहरि को उन्होंने नवद्वीप तब शिक्षा केंद्र थे, बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नवद्वीप थे, तो नवद्वीप में नरहरि को एडमिशन कर दिया। और इधर जब गौरनगर रामकली में मुस्लिम जो हुसैन शाह बादशाह, उनको पता चला कि मुकुंद सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर है, तो उनको उन्होंने लेने के लिए बताया कि आप मेरे घर के मेरे परिवार के राजवैद्य बनो। तो जरूरी भी था पैसा इनकम करना, तो इनके प्रेरणा से और यावन सरकार है नहीं जाने से, तो इसलिए उन्होंने अपने कुल देवता की सेवा किसी को ऊपर दिया सेवा करने के लिए। और उन्होंने गांव छोड़कर दोनों भाई नरहरि नवद्वीप में है और मुकुंद गौरनगर में चला गया रामकली में। रामकली के पास में उनका राजधानी था तो उधर जाके चिकित्सा करते थे और इधर नरहरि अध्ययन करते थे। लेकिन मुकुंद जो बाहर में तो राजवैद्य की सेवा वैद्य डॉक्टर थे, लेकिन अंतर में तीन रात भगवान की सेवा के बारे में सोचते थे, भगवान के बारे में सोचते थे। तो ऐसे ही उनकी एक दिन की बात है कि उन्होंने राजा जाके बहुत ऊंचे स्थान में बैठा, एकदम खुला हवा लेने के लिए अच्छे वातावरण, सुबह सुबह जाके ऐसे ही, और मुकुंद उसी समय जाके उनके तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। इसी समय सूर्य उदय हो गया, राजा है उनके शरीर पे सूर्य का किरण लगा, धूप लग गया, तो सेवक ने एक मोर पूछ से बनाए हुआ बहुत बड़े पंखे जैसे उनके पीछे राजा के पीछे लेके रखा। मुकुंद जब इसको देखा तो कृष्ण स्मरण हो गया, कृष्ण स्मरण हुआ, कृष्ण स्मरण से उन्होंने मूर्छित होके बहुत ऊंचा स्थान से 10-15 फीट ऊपर से उन्होंने नीचे गिर पड़ा। और वो जो भाषा है मुस्लिम है, उन्होंने सोचा कि ये राजवैद्य का मरण हो गया और उन्हें तुरंत नीचे आए और उनको सुस्त किया और बोला तुमको दर्द कहाँ लगा? बोला मुझे ज्यादा के दर्द नहीं लगा। तो इसके बाद पूछे तुम गिरा क्यों? तो बताते हैं कि महाराज मेरा मिर्गी व्याधि है। मिर्गी व्याधि जब होते हैं तो क्या करते हैं, गिर जाते हैं लोग, अच्छा मैं तुरंत बेहोश हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके गिर पड़ते हैं। तो इन्होंने बताया नहीं कि मेरा अष्टसात्विक विकार आया था, मूर्छा आ गया था। ये भक्ति की शुद्ध भक्ति का अनन्य लक्षण है अष्टसात्विक विकार की, असली आखिरी जो स्टेज है मूर्छित हो जाना। तो उन्होंने गोपन किया, लेकिन महाविद्यक दो राजा हर कुछ जानते हैं कि ये क्यों ऐसे बताया, तो वो महासिद्ध ज्ञान उनका हो गया। इसके बाद उनके नकली करने में अच्छा नहीं लगा। इधर नरहरि जो नवद्वीप में रहते थे, गंगा में टहलते थे और अध्ययन करते, लेकिन ये बचपन से ही लेखक थे, राधा कृष्ण की लीला के बारे में कवि थे, लिखते थे बचपन से ही। तो उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा चैतन्य महापुरुष के बारे में, नवद्वीप में हजारों हजारों लोग विद्यार्थी है, अध्ययन करते हैं, महापुरुष निमाई पंडित के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। तो उनके एक दिन स्वप्न में आया कि ये जो है ये निमाई पंडित है, भगवान है, और इनके दर्शन के लिए बहुत ही लालायित होते थे, उत्कंठा हुआ मन में। तो उन्होंने एक दिन देखा महाप्रभु गंगा में टहल रहे थे, अकेले ही थे, जाके उनके चरण कमल में गिर पड़े और स्वप्न के वृत्तांत तो सुनाए। तो महाप्रभु उनका कृपा किया और तब से महाप्रभु के संबंध लिखने लगे और महाप्रभु उनकी जीवन धन प्राण हो गया। दिन रात महाप्रभु के बारे में सोचते थे और इनकी मन में एक ग्लानीय हुई कि मेरा भाई जो है, मैं इस परमानंद को भोग कर रहा हूं, महाप्रभु के संग के आनंद ले रहा हूं, लेकिन मेरा जो भाई है ये इससे वंचित है। इसलिए उन्होंने सोचते थे मुकुंद भी आ जाता तो हम लोग दोनों भाई महाप्रभु के इस परमानंद के साथ में रहकर परमानंद अनुभव उपभोग कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने दुखी रहते थे और उधर विद्या अध्ययन करते थे। तो बीच में मुकुंद को और अच्छा नहीं लगा, इसके जो मूर्छित होकर गिर गया उसे ज्यादा दिन और राजकार्य नहीं किया। राजा से बताया, देखिए मेरा मन इतना ठीक नहीं है, मैं आपके राजबद्ध के कार्यों में नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी ये नकली नहीं करूँगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो राजा ने समझाया, देखो तुम्हारा परिवार भी चलाना है, सब कुछ करना है, तुम इतना बड़ा चांस मिला राजबद्ध बनने का, तुम ऐसे क्यों करते हो? बोला नहीं, मुझे हो ही नहीं रहा है। तो इससे छोड़ के आ गए और महाप्रभु से नरहरि ने बताया कि मेरे भाई भी है, बड़े भाई भी है, वो भी आ जाता। बोले देखो आप चिंता मत करो, वो भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो ऐसे ही दोनों भाई बहुत ही मित्र, एक साथ में बहुत ही ये थे। तो एक भाई को छोड़कर दूसरा भाई रहना, तो उन्होंने जब नकली छोड़ के आया तो अपने गांव श्रीखंड में इष्टदेव भी है गोपीनाथ, उधर गए नहीं, पहले नरहरि से मिलने के लिए आया। नरहरि से मिला, नरहरि ने सारा संवाद दिया महाप्रभु के बारे में। तो महाप्रभु के संग में जाके महाप्रभु के चरण कमल में गिर पड़े और आत्मसमर्पण किया। महाप्रभु उठाए, आलिंगन किए तो महाप्रभु के साथ में परमानंद वे दोनों भाई रह रहे थे। और दोनों भाई ऐसे संकल्प किए थे कि हम लोग आकुमार ब्रह्मचारी रहेंगे, रहकर महाप्रभु के सेवा कार्य में महाप्रभु के साथ आनंद उपभोग करेंगे। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद एक दिन मुकुंद को महाप्रभु जी ने बुलाया, मुकुंद क्या प्रभु, आपको शादी करना है। वो तो आकाश से गिरा, प्रभु की आज्ञा है, अपने संकल्प भी लेके रखा है। तो तुरंत रोने लगे, महाप्रभु के चरण पकड़ लिया, रोने लगे और क्या करे, महाप्रभु जी बता दिया। फिर भी उन्होंने बताया, देखिए आपकी जो बात है, आपकी जो इच्छा है, त्रिभुवन उसको पालन करते हैं और आपको इच्छा की जो अन्यथा करने वाले कोई नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे संकल्प किया था मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा और मेरा शादी करने का समय भी चला गया, तो आपने मुझे आज्ञा दिया, तो लेकिन एक सलाह मैं देता हूं कि प्रभु नरहरि जो है वो अभी फिट कैंडिडेट है शादी करने के लिए, आप उनको आज्ञा दे दीजिए, मुझे ब्रह्मचारी रहने दीजिए। तो बोला देखो ये व्यापार नहीं चलेगा, मैं तुमको बताया और तुम्हारा पुत्र रूप में काम प्रद्युम्न कामदेव के अवतार अवतीर्ण होंगे, तुम्हारा पुत्र रूप में, नरहरि के पुत्र के रूप में नहीं। और बड़े भाई शादी नहीं करने से छोटा भाई शादी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं तुमको बताया तुमको ही शादी करना है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें लड़की ढूंढना नहीं पड़ेगा, लड़की वाले तुम्हारे पास आ जाएगा मेरे कृपा से। और ऐसे मत सोचो कि मैं मुझसे आप दूर रहोगे, आप जब भी मेरा दर्शन करने के लिए सोचोगे मेरा दर्शन आपको मिलेगा। आप अपने पूर्व पुरुष की जो भेटा है, स्थिति है, स्थान है, वो चला जाओ। तो उनके सिर पे वज्र गिरा, जो परमानंद भोग उपभोग कर रहे थे इसमें उनका सिर में वज्र गिरा, बिल्कुल नहीं चाहते थे फिर दोबारा संसार में जाने के लिए। देखो और महापुरुष बहुत उनको समझाया कि देखो तुम्हारा संसार बंधन नहीं है, मैं मुझे पता है स्त्री लोगों के प्रति तुम्हारा कोई आसक्ति नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी महत् कार्य के लिए तुम्हें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तब महाप्रभु जी के आज्ञा से मुकुंद जाने के लिए तैयार हो गया, नवद्वीप छोड़ के जा रहा है, पीछे लौट लौट के देख रहे हैं कि नवद्वीप इस परमानंद धाम को मैं छोड़ के जा रहा हूं, क्या करूं, प्रभु की आज्ञा है। भित्तेर इच्छा होते प्रभु आज्ञा बरो, भित्त की इच्छा से प्रभु की आज्ञा जो है बड़े होते हैं। अभी हम लोग जानते हैं भागवत में प्रियव्रत महाराज भी ऐसे संकल्प था, लेकिन उनको भी आना पड़ा। तो इन्होंने मुकुंद गए, गांव में जो श्रीखंड है उससे 1 किलोमीटर दूर जंगल है, वो बरडंगा नाम है, निर्जन स्थान है, वन है, और गांव में जाके गोपीनाथ जी का सेवा आदि करते थे, निर्जन निर्जन स्थान में बैठे बैठे भगवान के नाम चिंतन स्मरण आदि करते थे, एकांत में बैठ के भजन आदि करते थे, उधर ही रहता था, केवल सेवा के समय गोपीनाथ जी की सेवा, कुल देवता उनकी सेवा करके आ जाते थे। अभी भी स्थान है बरडंगा, तो विशाल बरगद के वृक्ष है, और बताते हैं कि ये बिंदा देवी है मुकुंद देवी, मुकुंद दास, तो उनकी क्षेत्र है, तो इसलिए वो भजन करते थे। लेकिन ऐसे भजन करते करते एक व्यक्ति एक दिन आ गया, कुछ बातचीत करने के बाद बताया कि मेरी एक उपयुक्त बेटी है, उनसे आप शादी करो। तो उन्होंने समझ गया कि ये महाप्रभु की इच्छा, महाप्रभु के प्रेरणा से ये आ गए। तब कोई बातचीत करने के बाद उन्होंने राजी हो गया और उनकी शादी हो गए। तब जाकर उन्होंने गांव में रहने लगे, कुटिया बना के, और सेवा पूजा आदि ठाकुर जी की सेवा करते, अतिथि सत्कार करते हैं, अतिथि की सेवा पूजा बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। तो बताते हैं कि खाने से पहले पूजा आदि करके, भोग लगा के, प्रसाद खाने से पहले बाहर जाके बोलते थे, कोई ऐसे भूखा है आ जाओ, तो कोई आते थे या किसी को बुला के खिलाकर उसके बाद ही प्रसाद पाते थे, अच्छे सच्चे गृहस्थ धर्म पालन करते थे। तो ऐसे ही श्रीखंड में बहुत आनंद में भजन भजन में समय व्यतीत हो रहा था। इसी समय उनकी गर्भ में एक दिन उनकी तबीयत, उनकी पत्नी की जो है तबीयत खराब हो गए, तो महाप्रभु ने एक चर्बी तो तांबुल दिया, पान चबाए हुआ पान दिया, और पान जब वो पान प्रसाद आधार अमृत मधु है, आधार अमृत है, इसका नाम है फैला, फैलाई लवो, फैला का लव जिसके एक बार मिल गया परमानंद प्राप्त होगा, फैलाई लवो। तो भगवान की जो आधारामृत है इसका नाम क्या है, फैला, इस फैलाई लवो। तो इस आधारामृत जो राधारानी भी जब भगवान ठाकुर जी का पान को चिबाते हैं तो ऐसे आनंद विभोर हो जाते हैं, तो ये आधार अमृत है, ये 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय के लिए 5 अमृत भगवान में है, और इस 5 ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा हम विषय में फांसते हैं, और ये 5 ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा हम भगवान में, भगवान के सेवा में निमग्न हो सकते हैं। ये आग जो है, कृष्ण दर्शन बिना नेत्रे फल नहीं आन, जे जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। जो भगवान के श्री विग्रह भगवान के दर्शन करते हैं और नेत्रों का कोई फल नहीं है, इधर उधर की देखना ये फल नहीं है नेत्र की, नेत्र का जो दर्शन दृष्टि शक्ति दिया इसका एक ही फल है, भगवान कृष्ण अवलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, और कोई फल नहीं है। जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। और हम अपना दो नेत्र भी भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो इसलिए श्री विग्रह को बहुत समय तक दर्शन करना चाहिए। जब इस भगवान के दर्शन करते 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 हमारा उसमें आसक्ति होगा, भव दर्शन की जो इच्छा है बंद हो जाएगा। ऐसे आंख और अधरमणितो जो जीव जो है स्वाद है, स्वाद इंद्रिय भगवान की अधरमणितो लेना है, आग भगवान के रूप का दर्शन करना है, भगवान में चढ़ाए हुआ पुष्पों की सुगंधि को लेना है, नाक की जो है गंध है और कान में भगवान की ध्वनि को सुनना है, बांसुरी की ध्वनि, आभूषण की ध्वनि और उनके कंठ की ध्वनि, अभी कहाँ मिलेगा? भागवत में है। भागवत में जो गोपी लोग गाए हैं, जो वर्णन है लीलाओं का, उनके ध्वनि का बांसुरी वेणुगीत, उस ध्वनियों को कानेर भीतर बासा करे अपनी तह सद स्फुरे अन्य शब्द ना दे प्रवेशिते ধনী বর যোদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত পতিকল হইতে ঠানি আনে। তো এসে কান কে অন্দর যাকে ঘোষলা বনা লেতে হ্যাঁ আর হমেশা গুঞ্জতে রহতে ভগবান কে ধনী আর ঘোষলা বনা কে উদর রহতে হ্যাঁ সদা স্মরণ হতে হ্যাঁ আর ইতনা অতি इतना उद्धात है भगवान के धनी जो पतिव्रता के पतिव्रता की पतिव्रता व्रतों भी तोड़ देते हैं, पति की गोद में बैठा उसको भी खींच के लेके आते हैं। हम लोग क्यों नहीं खींचते हैं? विषय की शब्द सुनने में बहुत प्यासा, इधर विषय की जो शब्द ये घोषणा बना लिया वो प्रवेश नहीं है, इसलिए हमें खींचते नहीं है। नहीं तो भगवान की अद्भुत रूप है ये देखकर कोई अपने नेत्रों को वापस नहीं ला सकते हैं। किसी का बाप का साध्य नहीं कि नेत्र अपनों को वापस लेके आए और दूसरा रूप को देखे, किसी का साध्य नहीं है। लेकिन विषय की काबार चरा हुआ इसलिए दर्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही अधर्मनितो भेजा था महाप्रभु जी ने, इस अधर्मनितो पाए तो उनका शरीर जो है सुस्त हो गया, स्वस्थ हो गया। इसके बाद उन्होंने गर्भ धारण किए और समय में बसंत पंचमी के दिन रघुनंदन ठाकुर की आविर्भाव हुआ। तो महाप्रभु जी बताए थे कि देखो तुम्हारा पुत्र के लालन पालन शिक्षा आदि नरहरी करेंगे। तो नरहरी भी बीच बीच में आकर उनके देखभाल करते थे। बचपन से शिशु के एक अद्भुत स्वभाव, अद्भुत स्वभाव बचपन से ही थे रघुनंदन, इसका नाम हुआ रघुनंदन। तो रघुनंदन बचपन से अद्भुत स्वभाव है कि जब छोटे बच्चे हुए खेलने में उनका कोई मन रुचि नहीं है। क्या करते थे? देखते थे पिताजी और चाचा जी कैसे क्या करते हैं, कैसे गायत्री करते हैं। वो कुछ भी मंत्र पता नहीं, लेकिन ऐसे हाथ करके बैठे रहेगा रघुनंदन, आग बंद के ध्यान लगा के। उसके बाद वो लोग कैसे कीर्तन करते हैं उसको देखेंगे, उसको गाएंगे। और कोई अतिथि आएगा उसके पास जाएंगे, बैठे रहेंगे, उसे पूछेगा आपको कुछ चाहिए, क्या लाऊं, पानी लाऊं, फल लाऊं। ऐसे उसे जाके अतिथि सत्कार के लिए बहुत ललायत हमेशा जाके उसके पास बैठे रहेंगे, पूछेंगे क्या चाहिए। और कभी हमें अपने समवयस्क बच्चे को लेकर अपने खुद व्यास बन जाएंगे, दूसरे बच्चे को बैठा के प्रवचन करेंगे, प्रवचन कर करके भागवत के अद्भुत सिद्धांतों को स्थापित करेंगे। कभी कभी भाव में विभोर होकर मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। ऐसे भाव दशा को देखकर पिता होते हर्षित हुए और आनंदित हुए। और क्या करते हैं कि पिताजी जो गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं, वो नहा धोकर पूरा नए वस्त्र पहन के पिताजी के पास जाकर बैठे रहेंगे। बहुत ध्यान से देखते हैं पिताजी क्या कैसे क्या सेवा करते हैं ठाकुर जी की। और गांव में घूमेंगे, घूमने के बाद जो देखा बहुत अच्छा एक फूल है, फूल है, तुलसी है, कोई फल भी है, तो जाके सुबह सुबह जाएंगे और उसको उठा के लेके आएंगे गोपीनाथ की सेवा के लिए, गोपीनाथ को लाके दे देंगे। सुबह सुबह जाएंगे, जब लोग सोए, बंगाल में लोग ज़्यादा सुबह नहीं उठते नहीं, जैसे ब्रज में बहुत जल्दी जल्दी जग जाते, उधर नहीं, बहुत लेट में उठते हैं। तो सुबह सुबह जाके फूल फूल आदि तुलसी पत्ता फल फूल लेके आएंगे। तो ऐसे उनका हमेशा सेवा जो 24 घंटा बचपन से ही भगवान में निमग्न है, तो ऐसे सेवा को देखा, अद्भुत बालक को देखा, मुकुंद ने सोचा कि मैं यदि कहीं पे जाऊं तो सेवा के लिए रघुनंदन कर सकते हैं, इसका मति है सेवा करने में। और हम लोग देखते हैं जीव गोस्वामी है, परीक्षित महाराज है, उद्धव जी है, हर लोग बचपन में ही भगवान की इस खेल में खेलते थे। जीव गोस्वामी को छोटे छोटे कृष्ण बलराम थे, रात को क्या करते थे, अपने स्थिति में लेकर सो जाते थे, वो माता जी छुराने से भी नहीं छोड़ता था। तो ऐसे अच्छे बालकों के शुभ लक्षण, तो इसको देखा मुकुंदो, सोचा कि हाँ ये गोपीनाथ की सेवा कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखते थे। तो एक दिन ऐसे सेवा करते रघुनंदन को बोला, रघु काल इस तुम्हारा गोपीनाथ की सेवा तुम स्वयं तुम ही करोगे, मैं कुछ कार्यों के लिए बाहर जाऊंगा। जब इस बात को रघुनंदन कान में पहुंचा, आनंद में वो एकदम खिल पड़े, आनंद से विभोर हो गया। आज इस गोपीनाथ की सेवा मैं करूंगा, आज काल सेवा मैं करूंगा। अच्छा, और आनंदित हो गए, आनंद में हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गए, और बस माता जी को भी जगाया, काल मैं गोपीनाथ की सेवा करूंगा, ठीक से सजा देना है, ठीक से सब कुछ कर देना है, और बोला कि माता जी के सब तैयार कर देगी और आप सेवा करना है। अभी उसके लिए दिन बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, दिन दिन नहीं जा रहा है, कब मैं सेवा करूंगा, कब मैं सेवा करूंगा ठाकुर जी की, पूरा एकदम आनंद, दिन क्यों नहीं जा रहा है, इतना लंबा क्यों हो गया, रात को नींद नहीं हो रही है, तो उठे बीच बीच में बैठ जाते हैं। अरे माता जी बताते, अरे रघु अभी भी बहुत समय, 12 बजा भी। तो अच्छा, उसका मन में इतना प्रफुल्लित, इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने से भार नहीं समझना चाहिए, आनंद से प्रफुल्ल के साथ सेवा करने। प्रेमे कृष्ण भजे से बापेरो ठाकुर, प्रेमो शून्य जीव केवल छाचेरो कुकुर। जगदानंद पंडित बताते हैं, प्रेम में जो कृष्ण की भजन करते हैं बाप की ठाकुर, आज रघुनंदन बाप की ठाकुर बनेगा, रघुनंदन बाप की ठाकुर बनेगा। तब जगदानंद ने बताया, जो प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो बाप का भी ठाकुर, बाप का भी पूजनीय है, और जो प्रेम बिना जो सेवा करते हैं वो क्या है, छांस पीने वाले कुत्ते हैं। बहुत कठोर शब्द, जगदानंद का कठोर शब्द बहुत कठोर होता है, तो क्योंकि वो सनातन से भी पीटने के लिए तैयार हो गया था, बहुत कड़क है। तो ऐसे बताया, प्रेम चाहिए। यही मत बलभद्र करिल सेवन, प्रेम सेवा करि तुष्ट कइल प्रभुर मन। तो प्रेम सेवा में ऐसे सेवा करो प्रभु तुष्ट हो जाए। बलभद्र ऐसे सेवा किया, प्रेम सेवा से महाप्रभु तुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। इसलिए सेवा को बहुत प्रसन्नता, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ सेवा करना चाहिए। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद इस भगवान की दुर्लभ सेवा हमें मिला। कोई भी सेवा हो ठाकुर जी की, अंदर हो, बाहर हो, मला बनाना हो, कुछ भी सेवा हो, हर कोई सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेवा में कोई तुच्छ लघु और ये नहीं होता, प्रेम चाहिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना क्या सेवा, क्या व्यर्थ है वो जीवन, दरिद्र है, भले कितना भी पैसा बैंक में रख दो, वो क्या है, प्रेम धन जिसका नहीं है, व्यर्थ है उसका जीवन, दरिद्र है वो। तब प्रेम ही धन है, क्योंकि गोस्वामी के पास कोई धन नहीं था, प्रेम धने धनी था, आज अल्टार में पूजा हो रहा है। देश में नहीं सारा विश्व में परम आदर से लेते हैं। कृष्णदास कविराज करते, गुरु शिक्षा गुरु कोरी मानी, प्रेम धन था इसलिए। वास्तविक धन क्या है? एक कागज नहीं है, वास्तविक धन क्या है? प्रेम धन। प्रेम धन के बिना व्यर्थ है, दरिद्र है जीवन। तो इस प्रेम था, इस प्रेम में वो उसका समय नहीं बीत रहा था। तो सुबह हुआ, तुरंत नहा धोकर के पूरा आनंद के साथ एकदम तैयार हो गया। आकर तिलक आदि लगा के तैयार हो गया। माताजी ने पूरा सुंदर करके पूजा के प्लेट, फल के भोगों के प्लेट पूरा अच्छा से सजा दी और जाके घंटी बजा के ठाकुर जी को उठाए और स्नान उनके सेवा के लिए तैयार हो गया। तो सेवा करना पड़ते हैं, 1600 उपचार में पूजा होता है। तो पूजा के लिए प्लेट में चंदन से बीज मंत्र लिखना पड़ता है, चंदन से अष्टदल कमल बनाना पड़ता है और प्लेट आदि शुद्ध, आसन शुद्धि करना, आसन शुद्धि करके फिर 1600 उपचार 1600 प्रकार विधि से किया जाता है। जैसे आसन है, सागातम है, पाद्यम है, अर्गन है, आचमन है, मधुपर्क है, पूर्णाचमन है, उसके बाद स्नान है, वस्त्र उपवेद वस्त्र, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य नमस्कार, ऐसे 1600 उपचार है। इस 1600 उपचार में पूजा, तो उनको तो मंत्र तंत्र कुछ नहीं है। ये क्या सेवा किया? प्रेम सेवा, प्रेम सेवा, प्रेम सेवा में प्रभु वश हो जाते हैं। तो ऐसे प्रेम सेवा, भगवान का स्नान आदि कराए, स्नान कराने के बाद स्नान कराया और उसके बाद सूक्ष्म वस्त्रों से भगवान का दर्द ना हो, दर्द ना, भगवान के शरीर बहुत कमल होते हैं, सूक्ष्म वस्त्रों से उनको पानी, जो स्नान के पानी सुखाना है, इसके बाद उनको वस्त्र उपवीत उपवीत वस्त्र आदि धारण कराना है, फिर चंदन तुलसी माला दे के सुगंधित पुष्प देकर माला आदि धारण करा, आभूषण धारण करा के पूजा करना पड़ता है। कैसे? धूप दीप गंध पुष्प धूप दीप, इसके बाद नैवेद्य निर्वादन। तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक से जैसे पिताजी से देखा था, क्योंकि बहुत ध्यान से जब देखते, कोई भी कार्य के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, मन उसमें निविष्ट करना पड़ता है और प्रीति होना पड़ता है, तब आसानी से सेवा हो जाते हैं। तो ऐसे ही रघुनंदन सब सेवा किया। अभी भोग लगाया, भोग लगाया, क्या मंत्र बताया पता है? प्रेम से बोला खाओ ठाकुर खाओ, बांग्ला में क्या बोला? ठाकुर खाओ खाओ, ए देखो, अब लोभ दिखा रहा है क्या? देखो माता जी, ये लड्डू ये है, ये स्वीट राइस है, ये खीर है, ये है, देखो माता जी कितना अच्छे से सजा दिया, खाओ खाओ ठाकुर खाओ। ऐसे बहुत बोले खाओ, खाइए खाइए भगवान, अभी ले लो खाओ, ऐसे बोल के प्रेम से, प्रेम के साथ बोला। अभी तो और मुकुंद एक शब्द बताया था, भालो करी खवाइबा, अच्छे से खिलाना ठाकुर जी को। तो अभी पिताजी बोला खिलाने के लिए, बच्चे तो भगवान तो खाते नहीं है, बाल बुद्धि, अभी तो भगवान तो दृष्टि मात्र से खाते हैं, लेकिन वो तो खाया, लेकिन ये बच्चे के पास तो काम चलेगा नहीं, बच्चे को खाना पड़ेगा, खाने के पिताजी बोले अच्छा से खिलाना। तभी खाता नहीं, बहुत प्रार्थना किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत समझाया, खाता नहीं। अभी बहुत चिंता हो गया पिताजी, तो बोला देखो आप नहीं खाओगे? पिताजी मुझे बताया खिलाने के लिए, मैं आने से बता दूंगा कि पिताजी तुम्हारा ठाकुर जी जो है तुम्हारा हाथ से ही खाता है, मेरे हाथ से खाता नहीं है, क्या करूं? ऐसे बता दूंगा, मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे किया। तो पिताजी सब डरते नहीं, ठाकुर से बिल बच्चे से जैसे बात कर रहा है, बोला ठीक पिताजी सब डरते नहीं है, मैं आपसे इतना प्रेम करते हो, आप मुझे प्रेम नहीं करते हो, कैसे है आप? मैं इतना प्रेम करता हूं, प्रेम नहीं करते हो, और ऐसे तुम करोगे तुम्हारे पास मैं नहीं आऊंगा, तुमको कौन भजन सुनाएगा, अकेला रहोगे इधर अल्टर में, कोई नहीं आने वाला, तुम्हें से तो फिर नाराज होके फिर भी नहीं ले रहा है भगवान, अभी तो भगवान देख रहे, अभी क्या करूं, बच्चा है तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बताया, भगवान तो नहीं ले रहा। तो बोला ठीक है, मैं इतना प्रेम करता हूं आपसे, मुझे आप प्रेम नहीं करते। आंखों से रोना शुरू कर दिया और बोला ठीक है मैं जा रहा हूं, मैं अभी नहीं, अभी मंदिर नहीं आऊंगा, और आने से पिताजी ने से बता दूंगा ठाकुर जी खाता नहीं मेरे हाथ से, मैं आऊंगा ही नहीं इधर, तुम अकेला कर। ऐसे करके उल्टा होकर जा रहा था और नेत्र भमोर मुख पद्म की ओर, रघुनंदन की नेत्र भ्रमर जो है वो छोड़ नहीं पा रहा था, कमल की जो सुगंधी है, कमल की जो सुंदरता उसको देख के भ्रमर छोड़ नहीं पाता, तो नेत्र कमल छोड़ नहीं पा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था तो देखा भगवान ने थोड़ा मुस्कुराया, अच्छा तो तुरंत वो आ गया, आया और भगवान ने आपने धर्म को त्याग कर दिया, प्रतिमा श्री विग्रह का धर्म त्याग करके साक्षात आके बैठ के खाने लगा। खाते खाते ए लड्डू खाया, ये खाया, सब कुछ पूरा खा गया, पानी भी पी लिया आखिरी में, खाली प्लेट लेके आ गया। अच्छा अरे तेरा पिताजी हर दिन प्रसाद लेके तू लाया नहीं? बोला क्या करूं ठाकुर जी सब खा गया। और दूसरा समय ठाकुर जी क्या करता है, खा के फिर रिटर्न करता है, बच्चा है रिटर्न करने से बोलेगा खाया नहीं, तो इसलिए रिटर्न भी नहीं किया। दिया मुकुंद आ गया, मुकुंद का नियम था कि ठाकुर जी के पानी भी नहीं पीता था, केवल महाप्रसाद और पानी भी पिएंगे, महाप्रसाद पानी पिएंगे। तो बोला रघु कैसे अपने भोग लगाया, भगवान कैसे शिकार किया, प्रसाद लेके आऊं तो आके बताया पिताजी क्या लाऊ, कुछ भी नहीं है, सब तो भगवान खा गया, कोई प्रसाद नहीं आज। अच्छा भगवान खा गया, लेकिन वो जानते थे कि ये श्रेष्ठ है, तो बोले खा गया, उन्होंने विचार करने लगा खा गया, और अपनी पत्नी से भी पूछा कुछ नहीं लाया, बोले नहीं कुछ नहीं लाया, एकदम खाली प्लेट लेके आया। तो उन्होंने मन ही मन विचार किया, अच्छा तो उन्होंने बोला अच्छा एक दिन मुझे देखना पड़ेगा कैसे खाता। तो दूसरा दिन भी ऐसे ही ठाकुर जी का पूजा किए, पूजा करने खाने के लिए बताया, अभी नहीं खा रहा है, एक दिन खाया लेकिन अभी तो समस्या भी ठाकुर जी के लिए कि वो मुकुंद भी देखेगा, और नहीं एक दिन खाया भी मैं, अभी छोड़ भी अभी कैसे करेंगे, अभी भगवान की दुविधा में फंस गया। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक दिन खाया, और खाएगा नहीं, खाना ही पड़ेगा, जब खा रहा था मुकुंद पीछे से आया, मुकुंद भी देखा कि भगवान खा रहे, तो जो लड्डू था वो पत्थर हो गया, साथ साथ भगवान अपने विग्रह में प्रवेश हो गए और वो लड्डू हाथ में ही था, वो लड्डू भगवान के लिए, भक्त की महिमा को दिखाने के लिए, भक्त की विजय पताका झंडे को फहराने के लिए वो लड्डू अभी भी रखा था, लेकिन दुर्दैववश एक दुर्दैव के कारण वो विग्रह चोरी हो गया, कुछ साल पहले विग्रह चोरी हो गया, नहीं तो इसके पहले उस भक्त की विजय निशान को उड़ाने के लिए, मैं भक्तों को कितना भक्त वत्सल्य मैं हूं उसको दिखाने के लिए लड्डू रखा था, कि कोई कथा मिट जाएगा लोग जानेंगे नहीं, तो इस लड्डू रहेगा तो सबको पता चलेगा रघुनंदन के बारे में। तो समय तो बहुत तेजी से चला गया, अभी मुझे भी भागना पड़ेगा बहुत तेजी से। तो एक बार जगन्नाथपुरी गया, महाप्रभु रघुनंदन के भी लेके गया, तो रघुनंदन से मुकुंद से पूछा, मुकुंद दासड़े पूछे सोचिर नंदन, তুমি পিতা পুত্র তোমার শির ঘুনন্দন, কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনায়ে নিশ্চয় করিয়া কহ যাও কো সংশয়ে। মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন আমার পিতা হয়ে আমি তার তনায়ে আমার ও নির্চয় আমার সবার কৃষ্ণ ভক্তি রঘুনন্দন হইতেই অতএব রঘুনন্দন পিতা আমারও নীন চিতে। তো একদিন শচীনন্দন সব জানতে হ্যাঁ ফির পুছা মেরা মনে ভ্রম হো রায় ক্যা ভ্রম প্রভু বোলা पिता इसमें कौन है, एक छोटा सा बच्चा है और एक बड़े है। वो बोला कि मेरा शादी करने का उम्र भी चला गया, तो मतलब दादाजी जैसे हो गया। फिर भी महापुरुष पूछता है कि कौन पिता है कौन पुत्र है, मुझे पता नहीं लग रहा है, निश्चित करके मुझे बताओ। रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है, तुम ही पिता हो, या रघुनंदन तुम्हारा पिता है, तुम रघुनंदन का पुत्र हो, बताओ। तो बोला मुकुंद ने बताया कि रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उनका पुत्र हूं। क्यों? आमा सवार कृष्ण भक्ति, हमारा जो कृष्ण भक्ति है रघुनंदन से, इसलिए रघुनंदन हमारा पिता है। जहां हुई कृष्ण भक्ति सही गुरु है, जिससे कृष्ण व्यक्ति मिले वही गुरु है। महाप्रभु बोलते हैं बोला कहले निश्चय जहा हुई थे कृष्ण भक्ति, महाप्रभु बोला निश्चित करके अपने बताया, जिससे कृष्ण भक्ति वही श्रेष्ठ व्यक्ति है, वही गुरु है, तो वही पिता है। तो ये पद में मिल रहा है जय कृष्ण भजे, प्रेमे कृष्ण भजे से बापे रे ठाकुर, तो बाप का भी पूजनीय हो बन जाता है। तो इसी प्रकार महाप्रभु और भक्तों लोग को बताया, देखो मुकुंद के प्रेम जो है शुद्ध, जेनो निर्मल निगुर निर्मल प्रेम, जेनो शुद्ध हेम एकदम पवित्र, वो जो प्रेम हमारा जो भजन, जिस भजन के बीच में भगवान के प्रेम, भगवान के प्रेम सेवा के अलावा और कुछ नहीं है, यही है निर्मल प्रेम, यही है शुद्ध हेम, मतलब 24 कैरेट गोल्ड, हेम मतलब गोल्ड, तो वो है। और मैं भक्तों हूं और इस भगवान और इस प्रेम सेवा, इसके बीज में कुछ है सकाम कर्म आदि, कोई भी इच्छा प्रतिष्ठा की, कोई भी इच्छा हो अच्छे प्रवचक अच्छे भक्त बनने का, जो भी इच्छा है बीज में, जो भी इच्छा है वांछा है, वो वांछा है, ये शुद्ध हेम में कुछ मिलावट है। सकाम कर्मा जितने जितने ज्यादा मिलावट है उसमें गोल्ड में ज्यादा, और ज्यादा मिलावट है जैसे मिट्टी के बीज में भी कभी कभी गोल्ड होते हैं, मिट्टी के अंदर भी गोल्ड है, ऐसे ही हो जाएगा भजन। ये शुद्ध हेम मुकुंदों का था। इसी प्रकार मुकुंदों को समझाया, इसके बाद बताया महापुरु ने बताया, देखो तुमार कार्य धर्म धन जो पर जो रघुनंदन कार्य कृष्णेर सेवन कृष्ण सेवा इहा बिना इहार अन्य न हेमन रघुनंदन रहु आमार आमार भक्तगण संगे यही तीन कार्य सदा करी हो तीन जने। तो इसके बाद बताया रघुनंदन सेवा करे कृष्णेर मंदिरे दारे पुष्कर नितार घाटेर ऊपरे कदम्बेर वृक्ष एक फूले फूटे बारो मास नित्य दुई फूल है कृष्णेर अवतांश। तो क्या है रघुनंदन भगवान की सेवा, सेवा में उनका बहुत एकाग्रता है, तो सेवा के लिए उनको नियुक्त कर दिया भगवान ठाकुर जी की सेवा में, और वो सेवा करते थे, सेवा के अलावा उनका मन नहीं था दूसरा किसी में। और एक तालाब था, एक कुंड, कुंड के तट पे एक कदम्ब के वृक्ष थे, हर दिन साल भर कदम्ब के वृक्षों जो फूल हर एक सीजन में देते हैं, बारिश सीजन जब शुरुआत होते हैं तब कदम में फूल, लेकिन हर दिन दो फूल होता था और भगवान के कान में कर्णभूषण बनाते थे। तो इसलिए बताया कि रघुनंदन की सेवा कृष्ण सेवा है, कृष्ण सेवा बोले उसके मन नहीं, तुम धर्म धन उपार्जन करो और रघुनंदन प्रचार या नरहरि प्रचार कार्य करे, यही तीन कार्य तीन को करना है। तो इसमें इस चांस जब मिला प्रभुपाद इसमें पारपट लिख दिया, क्या पारपट है कि प्रभुपाद जी बोला कोई धन लाइफ मेंबरशिप करेगा, कोई नरहरि जैसे प्रचार आदि प्रचार भक्ति वृक्ष आदि प्रचार करेगा नरहरि, और लाइफ मेंबरशिप जो है कलेक्शन डिपार्टमेंट मुकुंदो और रघुनंदन पूजारी डिपार्टमेंट, तीन ही व्यक्ति था, तीन हेड डिपार्टमेंट दे दिया, डिपार्टमेंट हेड तीनों को बना दिया, ये तीन कार्यों स्वभाव के अनुसार। और महाप्रभु जो सेवा में नियुक्त किया स्वभाव गुण गुण कर्म के अनुसार, जैसे जिसका स्वभाव है उनका ठाकुर जी का सेवा के अलावा उनका मन नहीं है तो उसको, इसी प्रकार तीनों को सेवा किया, सेवा में नियुक्त कर दिया। तो रघुनंदन जी ऐसे ही बंगाल में प्रचार करियो बहुत, ये थे नरहरि सरकार चले गए, इसके बाद वैष्णव समाज की बहुत बड़े एक अध्यक्ष बने, सेवा प्रेम से करते थे। एक बार श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर दोनों मिलकर गए, बोले कि हमें अभी जाना है खेतरी में। ठाकुर ने बताया, रघुनंदन ठाकुर ने बताया कि आप जल्दी आ जाना, लेकिन श्रीनिवास आचार्य के मन में ये बात को खटक रहा था, क्यों ठाकुर मुझे जल्दी जल्दी आने के लिए बोला, तो क्यों बताया। तो उन्होंने जल्दी जल्दी खेतरी से, खेतरी नरोत्तम दास ठाकुर का श्रीपाठ है, जिनका जन्म स्थान उनके मंदिर खेतरी में है, तो खेतरी दोनों मित्रों थे, तीनों मित्रों थे, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तो श्रीनिवास बताया भी कि क्यों मुझे, नरोत्तम से बातचीत भी किया है कि क्यों मुझे जल्दी जल्दी आने के लिए बताया। तब उन्होंने आ गए, आने के बाद उनका जाजीग्राम है, अर्जुन हरि प्रभु थोड़ा मंदिर भी सुधार कर रहा है उधर, तो जाजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य का श्रीपाठ है, उनके जन्म स्थान के घर है, और उससे थोड़ा ही नजदीक में, तो जाजीग्राम में एक दिन रहा, इसके बाद गया तो एकांत में बुलाया, एकांत में बुला के बुलाए, देखो ये जो आज की तिथि साबुन महीना के जो शुक्ला पक्ष की चतुर्थी तिथि है, इस तिथि में मैं योजनाबद्ध शरीर छोड़ना, हम तो छोड़ने नहीं चाहते हैं, खिचक के ले जाते हैं फिर भी हम इधर रहते हैं, लेकिन इन्हें प्लान बनाया कि अभी इस चतुर्थी तिथि को, श्रावण महीना की शुक्ला चतुर्थी तिथि को मुझे जाना है। यही योगी है, ऐसे ध्यान नहीं किया, भगवत भक्ति ऐसे किया है कि उन्होंने जाने का भी इच्छा मृत्यु है कि मुझे जाना है। आप महासंकीर्तन के आयोजन करो, तो वो बहुत रोए, उनके चरण पकड़ के, आप चले क्यों जाएंगे, बोला नहीं जो भी है हम बता दिया, आप इसके जो बताया इसको करो। तो महासंकीर्तन के समारोह शुरू हो गया, और महासंकीर्तन समारोह चल रहे थे, इसमें महासंकीर्तन हो रहा था, एक दिन दो दिन तीन दिन, रघुनंदन भी बहुत कीर्तन में नित्य आदि कर रहे थे। इसके बाद समय आ गया तीसरा दिन, आज की तिथि, तो उन्होंने अपने मन को, उनकी पुत्र के नाम थे कानाई, इन सब को, भगवान गोपीनाथ और नरहरि ठाकुर के प्राण गौर उनमें उनको समर्पित कर दिया, और सारे जो भी भक्तों सब जगह से विषय मन से हटाया, और अपने इष्टदेव गोविंद गोपीनाथ जी और नरहरि के प्राण गौर, इस दोनों की ओर नजर अपने मन को लगाकर जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, जय श्री कृष्ण चैतन्य के, जय श्री कृष्ण चैतन्य के। एक तो मन लगाया, आंखों लगाया भगवान के चरण कमल दर्शन करके, और शब्दों से भगवान की पवित्र नाम को उच्चारण करते करते नाम के साथ अपने प्राण को निकाल के दे दिया, और तुरंत गिर पड़े। महासंकीर्तन के समारोह हुआ, बहुत श्रीनिवास आचार्य अपने अध्यक्षता में विशाल महाउत्सव महामहोत्सव मनाए, उनकी समाधि आदि हुई और सुंदर है। और बीच में बहुत सारे कथा था, मैं समय पर समाप्त करने के लिए बताया, आज ही वो स्थिति है। और बंशीदास बाबा जी जो है अद्भुत वैष्णव है, वो कभी खाते थे पीते थे कोई देखते भी नहीं, गंगा के तट पर रहते थे, ये कोपिन धारण करके, काला सा शरीर था, दाढ़ी था, बस नाम जप करते थे, क्या भाव में विभोर थे। गौर निताई और गोपाल भी था, राधा कृष्ण सबको सेवा करते थे प्रेम से, कभी कभी गौरनीताई को अभिषेक स्नान कराना तो बांध के गंगा में फेंक देता था, बहुत समय वो जप आदि करके बोले स्नान हो गया चलो लेके आते थे। लेकिन मंदिर जो उनका कुटिया था, कभी दरवाजा बंद नहीं करते थे, क्यों, बोले दो तो है ना गौरनीताई, एक दिन आकर जो कुकिंग वुकिंग करने का सामान है चोरी हो गया, बोले अच्छा चोरी हो गया, खाना नहीं मिलेगा किसी को, क्या कर रहा था कमरे में, देखा नहीं कि चोरी हो गया सामान, खिलाऊंगा नहीं, ठीक है, और खुद भी नहीं खाया। और उनका नियम था जब भोग लगाए तब खाएंगे, नहीं तो खाएंगे भी नहीं, ऐसे नहीं कि आपने खाया भगवान को खिलाया नहीं, ऐसे नहीं, भगवान को खिलाया तब खाएंगे। और कोई देखा नहीं, कोई पेशाब जाता है लेटिन जाता है, उनको देखा भी नहीं कोई। तो इसी प्रकार उन्होंने सेवा करते थे। एक दिन बाद एक बर्तन मिला, बोला अच्छा नीताई अपना बर्तन लाया, नीताई को मिला, गौरंगों को मिलेगा नहीं खाना। तो ऐसे प्रेम सेवा करते थे और फूल फूल गिराते, तो बहुत ही प्रेम सेवा उनको, बोलते थे अच्छा ऐसे तुम लोग तंग कर रहे हो, बोल दूंगा जशोदा मैया से। तो ऐसे प्रेम सेवा करके उनका भी आस बंशीदास बाबा जी की त्रिभाव तिथि है, परम वैष्णव थे, जिसका झूठन खाने के लिए भक्ति सिद्धांत तो अपने प्रभुपाद अपने शिष्यों को भेजते थे उनको झूठन को खाने के लिए, महान वैष्णव बंशीदास बाबा जी महाराज के। जय रघुनंदन ठाकुर के, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, जय निताय गौर शेतनाथ प्रवणंदे, हरि हरि बोल हरि कृष्ण। काय न वाच मनुषेन्द्रिय बुद्धि अपनानुसितेषु करोति यत सकलो परस्मिनायनेति। महाप्रसाद है लेकिन लाइन लगा के आना है, बिना लाइन वाले को बिल्कुल नहीं मिलेगा प्रसाद। माता जी एक बार दो, माता जी लाइन लाइन वाले को देना, दूसरे को देना। अरे लाइन 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 हरे कृष्ण। उधर 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 माता जी को उधर है, ये लड्डू है रघुनंदन के।
नहीं 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 प्रभु जी नहीं, मैं बैठा हूँ आपसे पहले,
लास्ट में
आपसे पहले मिलना चाहिए, आपसे पहले मैं बैठा।
अच्छा आप लाइन में आओगे तो हम ना लास्ट
में, लाइन में लाइन मेरे लिए नहीं।
भक्ति में आगे है वो।